आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, गांवों के विकास से साकार होगा विकसित भारत का सपना। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिक्षकों के लिए TET पास करने की समय सीमा एक वर्ष और बढ़ी। कल 2 पालियों में आयोजित की जाएगी BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 72 जिलों में बनाए गए 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा केंद्र की निगरानी। और प्रदेश में आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बीच बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
मऊ जनपद फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांवों के विकास से ही साकार होगा।
गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के सामयिक प्रयास है और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब गाँव विकसित होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कल कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। उन्होंने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने TET को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को कल खारिज करते हुए कहा कि TET केवल औपचारिक परीक्षा नहीं बल्कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में TET पास करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर अब 3 वर्ष कर दिया है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET पास करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 72 जिलों में 1011 केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने वाले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे के अनुसार परीक्षा को पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें।
इस बीच पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया है कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस कोरोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है। प्रदेश में बीते गुरुवार की रात से मौसम में आए परिवर्तन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज आंधी तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली से कई जिलों में जनधन की हानि हुई है। कल शाम आगरा में आंधी और तेज बारिश के चलते एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य लोग घायल हो गए, जबकि गुरुवार देर रात शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शाकंभरी देवी मंदिर प्रबंधन ने कल तक मंदिर में दर्शन पूरी तरह बंद कर दिए हैं। आंधी पानी से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवाओं के बीच बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा गांवों के विकास से साकार होगा विकसित भारत का सपना। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। शिक्षकों के लिए TET पास करने की समय सीमा 1 वर्ष और बढ़ी। कल 2 पालियों में आयोजित की जाएगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 72 जिलों में बनाए गए 1,000 से अधिक परीक्षा केंद्र हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा केंद्र की निगरानी। और प्रदेश में आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बीच बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।